نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفالح برا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد نفس اور شیطان یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں ہر گمراہ انسان جو ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے اصل سے لے کے آخر تک وہ ان کا شکار ہوا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو راستوں سے بھٹکاتے ہیں غلط رہبری کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں مجھے بھی آپ کو بھی اس کو بھی زید کو بھی بکر جب سے ابتدا ہوئی یا قیامت تک انہوں نے یہی کام کرنا ہے نفس اور شیطان اچھا یہ صرف گمراہ ہی نہیں کرتے بس اس سے ہی بڑا ایک بہت خطرناک کام کرتے ہیں گمراہ سے ہی بڑا ایک بہت خطرناک کام ہے ہم سب باتیں جو کر رہے ہیں قصہ کہانی نہیں اصلاح کی باتیں ہیں اگر بات دماغ میں آئے بہت سیریس باتیں ہیں بہتر ہے موت سے پہلے میں بھی سمجھ جاؤں آپ بھی سمجھ جائیں اللہ پاک بہت کرم کرتے ہیں انسان پہ بہت کرم کرتے ہیں ہم اللہ کی رحمتوں کو کرم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں حقیقت میرا اور آپ کے یہاں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا ایک معمولی بات ہے ایسے میسیج سننا ایک معمولی بات ہے یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے موت آ جائے گی تو سوچو بھائی بڑی سیریس چیز ہے بیٹھنا اٹھنا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ با مقصد بیٹھے ہیں ہم لوگ بے مقصد کچھ نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ ہم بے مقصد کسی جگہ بھی جمع کریں اور بیٹھ کے ہم باتیں کریں اللہ معاف فرمائے اس چیز سے تو دوزخ کہیں نہ بن جاتی ہیں ایسی جگہیں ایسی محفلیں ایسی باتیں جس میں نفس ہو خیالات ہوں اور بہت بہت سی چیزیں انسان لے کے جمع ہو جائے اللہ نہ معاف کر جب بھی اب جائیں آئیں ایسی جگہ پر سوچ کر آئیں کہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے مجھ پہ فضل ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاؤں گا وہاں سے کوئی نہ اپنے آپ بڑا سمجھے نہ کوئی بڑا عالم سمجھے نہ چھوٹا سمجھے نہ ادھر سمجھے نہ ادھر سمجھے بلکہ کرم یہ سمجھے کہ بھائی یہاں سے میں نے کچھ سیکھ کر جانا ہے غلطیوں سے بھرا ہوں میں انسان تب سنیں میری بات آپ صحیح ٹیکا لگے گا ان شاء اللہ آپ غور سے سنیں اسٹارٹ کروں پھر دو چیزیں نفس اور کیا کرتے ہیں انسان کو مرا کیسے مومن ہے تو کافر بنا دیں گے کافر ہے تو منافق بنا دیں گے فاسق بنا دیں گے چور بنا دیں گے ایسی ایسی صفت پیدا کر دیں گے گمراہ کر رہے ہیں کون کر رہا ہے زید بکر نہیں کبھی آدمی کی شکل میں آتے ہیں کبھی دوست کی شکل میں آ رہا ہے کبھی چاچی کی شکل میں آ رہا ہے کبھی مامے کی شکل میں آ رہا ہے کبھی بیوی کی شکل میں آ رہا ہے کبھی بچے کی شکل میں آ رہا ہے لیکن وہ نہیں ان کے پیچھے کیا چیزیں دو اسے بولو نفس اور کس سے ختم وہ دو ہیں روپ بدلتے ہیں رنگ بدلتے ہیں اچھا گمراہ میں نماز نہیں پڑھ رہا کون کر رہا ہے شیطان نے نفس अजान हो रही है, मैं नहीं कर रहा, बाजार पे खड़ा हूँ, गप्पे मार रहा हूँ, कौन बर्बाद कर रहा है? अल्लाह के पैगाम सुन रहे हैं, पता चल रहा है कि ये हम नहीं करेंगे तो इसका ये अजाब है कब्र में, हम वो काम नहीं कर रहे, कौन करा रहा है ये मुझे बोले, और किसने करा है? हराम खाता है, होने ये काम कर लो, फलां कर लो, झूठ बुला रहे, हराम खिला रहे, सूद खिला रहे, लड़वा रहे, ये कौन है? कोई नहीं है, दो चीजें कौन है, नफ्स और आगे बस पीछे जाना चाहिए हमें, उस आदमी ना पकड़े, इसने में किया, फला ने किया, ये ना कहता तो ये ना होता, मेरा बेटा कभी ना होता अगर ये आदमी ना मिलता, फला ना होता अगर मेरी बीवी के साथ लड़ाई ना कराता वो आदमी, चाचा, कोई नहीं करा रहा, करा कौन रहा है? नफ्स और अभी गुमराह ही नहीं करता, और किससे ऊंचा, बहुत ताकत है ना इन दोनों को, इससे भी ऊपर लेके जाता है, क्या करता है? गुनाह से ऊंचा कहां ले जाता है? कि धोखा देता है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या और सी बताइए अल्लाह ताला ने, कि नहीं नहीं गुनाह से ऊंचा ले जाएगा आपको, वो क्या है? धोखा है ही, दुनिया धोखा है, देखें दुनिया क्या है, धोखे का घर है ना, क्यों धोखे का घर है, हकीकत में धोखा कौन है? नफ्स और जिसका घर है, तभी तो धोखेबाज बनेगी दुनिया, अगर इस दुनिया से ये चीजें निकाल दें ये दुनिया क्या बन जाएगी बोलो? जन्नत, समझ आई बात? दुनिया यही होगी, जन्नत जो होगी दुनिया की चीजें मिलेंगी, ये तो मिलेंगे, यही बीवी होगी, यही बच्चे होंगे, यही शहद होगा, यही सब कुछ होगा, लेकिन उसमें मिलावट किसकी नहीं होगी? नफ्स की और शहबाज, सही बात समझे, तो जब नफ्स और शैतान को निकाल दे तो एक इंसान की जिंदगी क्या बन जाती है? जन्नत थी, वो जन्नत में फिर रहा होता है, दो ताकतें खत्म हो गई तो कहां फिर रहा है? वो जन्नत में फिर रहा है, ना धोखा दे है ना कुछ कर रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास जिंदगी गुजर रही है, जो हो अल्लाह का हुक्म है उस पर चले जा रहे हैं, और जन्नत में तो यही होगा, होगा या नहीं होगा? तो जन्नत क्यों बनी? दुनिया धोखे का घर क्यों बना? के सब फ्रॉड ही में नजर आएगा, क्योंकि नफ्स शैतान यहां मौजूद है, धोखा गुमराह करता है, ये धोखा भी देता है जबरदस्त, धोखा कैसे देगा? मिसाल, सो गया मैं, सो गया आप, सो गए, सोते हैं, सोने के बाद आंख बंद हुई और बिस्तर पर बिस्तर नहीं रहता, बेहतरीन महल में एक आदमी घूम रहा है, तीन चार बीवी है, वो सैर कर रहा है, बड़ा खुश रहे, थोड़ी देर में जा आधा पांच घंटे की आंख खुलती है तो देखा बिस्तर बड़ा खुजली कर रहा है, वहीं का वहीं है, ख्वाब में देखा बड़े बड़े जनाब कारोबार चल पड़े उसके, फलां हो रहा है और ये हो गया, पत्नी क्या क्या हो जाता है ना ख्वाब में, होता है ना आदमी किसी कुछ 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 बन जाता है, आंख खुली तो देखा वहीं का वहीं पड़ा है, जल्दी जाकर उसमें काम करना है, कुछ चीजें लेके आने, दुकान पे जाना है, मुंह धो के सीधा चला जाता है, तो जो ख्वाब में वो देख रहा था बादशाह बन गया, हकीकत क्या हुई? तो वहीं का वहीं है, जो था वहीं है ना, यही मामला इस धोखे का है, नफ्स शैतान इंसान को ऐसा धोखा देता है कि तू ये है, तू फला है, तू बस पूछना, तेरे तो जन्नत में ये ठिकाना हो, तेरे अमाल तो बड़े ऊंचे हो, तू तो हजरत साहब, तू तो फला हो, तू तो ये कौन, ये क्या हो रहा है मामला, ये पॉइंट समझे मेरा, ये क्या हो रहा है कि कहते हैं गुमराह से ऊपर लेके जा रहा है कि उसको धोखे में डाल दिया, गुमराह तो फिर भी बच जाएगा, वो थप्पड़ शप्पड़ मारेंगे उसको, कहेंगे चल नमाज पढ़ फला कर ये कर, फिर भी अगर, लेकिन धोखेबाज कभी नहीं समझ सकता, जो धोखे में कहते मैं तो हूं ही बादशाह, नहीं मैं तो जनाब हूं ही बहुत नेक आदमी हूं, मेरे क्या, मैं तो जनाब फला हूं, मैं तो ये हूं, क्योंकि उसने क्या किया इसको धोखे में डाल दिया, और धोखे में डालने के बाद फिर लोगों के चेहरे जबानों को शुरू करा देता, वाह जी वाह क्या बात है, ऐसा धोखा देता है आदमी को कि वो मरते दम तक तोबा, ये दो बातें समझ जाए मैं भी और आप भी, गुमराह करता है, गुमराह का दूसरा क्या करता है धोखे में, कि वो है नहीं लेकिन उसको वो पेश करता है, होता चोर उचक्का जहन्नुम की आग के अंदर खड़ा होता है लेकिन उसको जन्नत में खड़ा करता है, और तू तो बड़ा जन्नती आदमी है, बख्शा बख्शा है, तुझे किस चीज का फक्र है पगल, तू तो ये करके आया, तू तो अभी वो करके आया है ना। से लोग बहुत से दिखा देता हूँ आपको, आप लोग हैं क्या सारे ऐसी। और जब आंख खुलेगी, आंख कहाँ खुलती है, यहाँ तो बिस्तर पे खुली ना, सुबह होगी तो यहाँ हमारी सुबह कब होगी, ये मौत के बाद होती है सुबह। ये सुबह कहाँ होती है, बिस्तर पे नहीं होती, ये कब्र के अंदर होती है। वहां खुलेगी इसकी, इस धोखा को वहां नजर आएगा। है वहां की बातें किधर गया मेरे मुकाम, मैं तो ये था। जब वहां पढ़ेंगे फेंटे और जंटल हिसाब किताब होगा तब पता लगेगा कि तो शैतान मुझे धोखा दे गया था, मैं तो ये नहीं था। है या नहीं? अभी दो चीजें हैं इस दुनिया में, हर एक के साथ ही काम चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं एक क्वेश्चन डालता हूं आप, कि हम धोखे में तो नहीं है या बख्शा बख्शा है? मैं तो यार बिल्कुल, मैं तो ब्राह्मण बना हुआ है, मैं तो सब सही हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, कोई पता नहीं क्या क्राइटेरिया है मेरे पास आपके पास कि हम बख्शे बख्शाए हैं। हमारे पास आप जाएंगे तो कब्र के जन्नत बन चुकी होगी, हमारे ये हो चुका होगा, वे चुका होगा, फला हो चुका होगा, क्या गारंटी है किसी के पास? पता ही नहीं, मान के भी हमें पता से। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने मेरे भाइयों शैतान का और नफ्स का जो जिक्र किया है कुरान के अंदर, एक जगह नहीं पूरे कुरान में बड़ा है। और वास्तव तौर पर क्या ये सही दुश्मन है तुम्हारे? अंत आबदू कितना बड़ा लफ्ज का है कि तुम समझोगे मेरी इबादत कर रहे हो, तुम इनकी इबादत कर रहे होते हो हकीकत में। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हकीकत में तुम मेरी इबादत कर नहीं होते। हो सकता है तुम्हें धोखे में डाल रहा हो वो शख्स, तो समझ जाओ तुम समझो अल्लाह की इबादत कर रहे। नहीं, उसका धोखा इतना बुलंद हो जाता है कि बजाय मेरी वो अपनी इबादत करा रहा होता है। तुम तो उसको पूछ रहे हो, अपने नफ्स को पूछ रहे होते हो, वो तुम्हारा खुदा होता है। जरूरी नहीं कि बुत वो ही हो गए, ओ ये बुत पूछते हैं, नहीं नहीं, बुतों की तो अजीब शक्लें हैं। वो सबसे खतरनाक बुत है वो जिसको नस पेश करे और शैतान पेश करे, जिस पे हर आदमी सजदा कर जाता है। बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों, कितना टाइट मजमून हो गया ये अल्लाह सोचिए। तो अल्लाह ने वादा कर दिया कि खबरदार हमारी जिंदगी बड़ी एहतियात वाली जिंदगी है मोमिन, ऐसे नहीं है कि बस आ रहे हैं जा रहे हैं ठीक है ये हो रहा हम फला कर, नहीं नहीं नहीं, एक एक सांस ऐसे कदम जो है तुम्हारा बहुत खतरनाक खतरों घुमा होता है। इसलिए मैंने बता दिया तुम्हें, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दो तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन है। दुश्मनों को बताया इसलिए जाता है कि जिसमें अक्ल होगी वो दुश्मन से क्या करेगा? मुझे बोलो कौन बचता है? जो जो अकलमंद होगा। मैं कहता हूँ फला आदमी आपको दुश्मन अगर अकल होगी, अच्छा दुश्मन काम तो आपको लूटेगा भी, मारेगा भी, खाएगा, तो अगर अकल होगी मेरी तो उससे मैं हाथ में नहीं मिलाऊंगा, उसके नजदीक में नहीं जाऊंगा, उससे बचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बता दिया गया कि दुश्मन है और किसी वक्त में तुझे खत्म कर देगा। बचेंगे नहीं बचेंगे? तो मेरा मौला जो रब्बुल करीम जो कुरान के अंदर कह रहा है उसको बताने की जरूरत क्या थी नफ्स और शैतान की? उसने बताया कि इसलिए बता रहा हूं कि तुम में अकल होगी तो तुम उससे बचोगे, अगर नहीं बचोगे तो क्या हो जाओगे? तुम गुमराह भी हो सकोगे, उसके धोखे में भी तुम आ जाओगे। अगर तुम अपने दुश्मन से नहीं बचे तो दुश्मन तुम्हें मार देगा, कत्ल कर देगा, तुम्हें लूट लेगा। तो हम बचेंगे उससे, सेफ हो सकते हैं उस वक्त जब हम उससे बचेंगे, सिक्योरिटी करेंगे। तो अल्लाह ताला भी इसीलिए कह रहा है कि अगर तुम मेरे पास बहिफाजत आना चाहते हो तो मैं बता इसलिए रहा हूं कि तुम उससे, मुझे बोलो, मुझे बताओ कितने लोग बचने की कोशिश करते हैं? कभी सोचे इसके बारे में? हम ठोके जा रहे हैं बस, ये ऐसी जिंदगी नहीं है भाई, अंधाधुंध नहीं चलेगा काम, बहुत जबरदस्त हिसाब होगा वहां पर, बहुत जबरदस्त हिसाब होगा। जबरदस्त इसलिए लेगा अल्लाह ताला, उसने सब कुछ हमें यह दिया है। ये जो वो बता रहा है तो कल कहेगा ना कि तू नरमी किस चीज की, जब तुझे मैंने बताया था तो तूने एहतियात क्यों नहीं की, जानवर क्यों बना हुआ था, आज बता रहा है नहीं बता रहा। तो तो अगर इन दो दुश्मनों से बचना चाहते हैं तो अब हमें काम क्या करना है कि हमने इनसे जो बोलो, और जो बचेगा गुमराह और धोखे से शैतान से वही शख्स बच सकेगा जो इससे बचना चाहेगा। ये फिक्र मेरे गौर से सुनो कि कोई आदमी इससे बच नहीं सकता सिवाय उसके कि जो इससे वो बच गया। बोले सुभान अल्लाह, बात समझ आ गई। कोई आदमी भी बच नहीं सकता इससे, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कोई नहीं बचेगा सिवाय उस आदमी के जो इससे बचना चाहेगा। हम चाहते हैं बचना, मुझे आपस में नहीं जी, हम तो बच्चे बचाए हैं, ऐसी तैसी बच्चे बचाए हो तो कैसे बच्चे मुझे बताओ, क्या किया तुमने बचने के लिए? कुछ तो होता है। मैं कहूंगी इस दुश्मन से तुम जब बचोगे तब तुम अपने आप को बचाओगे। जी ठीक है, मतलब किस तरह बचा रहे हो, क्या सिक्योरिटी, क्या तुम्हारा प्रोटेक्शन है, बच रहे हो? तो जब हम कोशिश ही नहीं कर रहे बचने की तो कहीं उन लोगों में तो नहीं हो गए? अल्लाह माफ फरमाए कि गुमराह धोखे में डाल दिया अल्लाह ताला उस शैतान नफ्स ने मुझे, वो अपनी इबादतें करा रहा हो हमारे से, अपने तवाफ करा रहा हो। लगती अजीब बात है कि ऐसी बातें कि सुनते कम ही आप मेरे ख्याल में, सुने भी नहीं होंगी। ये मजालिस जो होती है ना सूफियों की, इसी किस्म की बातें होती हैं, वो उन टापों से हट की होती है जरा कुछ, इसमें और नमक मिर्च दूसरा किस्म का होता है, हिलता है आदमी से थोड़ा सा, हिले या नहीं हिले थोड़े से, ऐसा अजा मजा आएगा एंड में आपको, जब रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह मजा भी आता है ना। सूफी जब तो मस्त फिरता है कि अब काम बन गया हमारा, आज आपको बात पता चल जाएगी तो कितना खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक हमने कोशिश नहीं की नफ्स और शैतान से बचने की। तो बचेगा वही जो उससे बचना चाहेगा। अल्लाह ताला बताता है कि कैसे बचोगे और कैसे बच सकते हो तुम, अब अल्लाह बताएगा तरीका हमें, अगर तुम बचना चाहते हो तो ये बताएगा अल्लाह ताला तरीका। जब तरीका बताएगा तो जो उस पर कोशिश करेगा उसके मुताबिक अमल करेगा तो वो बच गया। सुभान अल्लाह, किस्सा खत्म, क्लू निकल आया। नफ्स और शैतान से बचने का वाहिद तरीका एक है मेरे भाइयों, मोहसने कायनात मोहसने इंसानियत सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तरीका। फिर बोले, फिर बोले, एक ही तरीका अल्लाह ताला कहता है, अगर नफ्स से गुमराही और धोखे से बचना चाहता है दो शख्स तो उसका वाहिद तरीका क्या है? मेरे हबीब का सुन्नतों का तरीका है। इसीलिए तो मैंने कहा है उम्मीतुल्ला रसूल फकत फाजा फौजा नजीमा, कि जिसने मेरा कुरान पकड़ लिया और मेरे नबी का रास्ता पकड़ लिया वो कामयाब है। जो कामयाब है वो किस चीज से कामयाब है कि ना उसको धोखा दिया नफ्स ने ना शैतान ने, हिज पास्ट, वो मुझे ही सजदा करता रहा, वो मुझसे ही मांगता रहा, वो मुझे रब मानता रहा, वो मुझे महबूब समझता रहा, वो मुझसे ही इश्क करता रहा, वो वही उसके लिए मंजिल थी, उसके लिए कोई था ही ला था, उसके लिए हर चीज जो थी वो ला हो चुकी थी। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी बात है। तो दो ही तरीके हैं, अल्लाह फरमाता है कि कामयाब शख्स वो है फकत फाजा फौजा नजीमा, जिसने मेरे अहकामात को पकड़ लिया, और तरीका अख्तियार कौन सा किया? मेरे हबीब की सुन्नतों को पकड़ लिया। फकत फादा, तो सवाल ही पैदा होता है जो नफ्स जो शैतान, जब उसका फेल सारे के सारे जो बामुताबिक सुन्नत के हो जाएंगे तो वहां नफ्स नहीं आ सकता और शैतान नहीं आ सकता। नफ्स कहता है कि तू ये काम मत कर मत कर मत कर मत कर, लेकिन पता है वो गुनाह है। आप कहते हैं मैं तो करूंगा क्योंकि नहीं, उनकी सुन्नत है, आई हैव टू डू इट। जब उसने सुन्नत को एक पकड़ लिया तो धोखा निकल गया, नहीं निकला इस काम का। और जो अपने नफ्स पे रहा तो वो अल्लाह को नहीं पूछता रहा बल्कि नफ्स के साथ उसकी उसको सीधा मार रहा है। आधा कुछ है, आधा कुछ है, अंदर से कुछ है, बाहर कुछ है, शक्ल और फला कुछ है, कोई उसका तरतीब है ही नहीं जिंदगी की। लेकिन जो सुन्नतों पे चलेगा ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, आगे से लेके पीछे तक, मुकम्मल इंसान होगा वो, है ही नहीं दोगा। कितनी बड़ी बात है। सही नफ नसाई की तर्मिजी की हदीस पेश करता हूं आपकी खिदमत है। है तो ये निकली मजमून निकलता है बुखारी और मुस्लिम से, लेकिन इसको आगे रवायत फरमा दी और इस हदीस को, तो पूरी हदीस चलती है वो है बुखारी मुस्लिम की, लेकिन इसको आगे जो रवायत फरमा दिया तर्मिजी ने और नसाई ने क्या है वो हिस्सा मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। इंशाल्लाह आप समझेंगे, बात सारी समझ आ जाएगी। तो अब ये देखने के लिए, बचने के लिए हमारे सबसे पहले चीज देखना कि मैं मोमिन हूं भी या नहीं हूं। जाहिर है कि मैं धोखे में हूं शैतान की या मैं मुसलमान हूं, ये देखने के लिए कि मैं मोमिन भी हूं या नहीं हूं, मुसलमान भी हूं, सिद्ध अल्लाह को कर रहा हूं किसी और को कर रहा हूं। तो कामिल मोमिन जो है वही कामयाब होगा, है ना। तो सुने पे हदीस, तो उस शीशे पे अपने आप को उतार लें। अब हदीस आती है, अब नबी पर हमकी सुन्नत आ रही है कि कोई इंसान भी जानना चाहता है कि मैं काबिल मोमिन हूं या नहीं हूं, जानना चाहेंगे नहीं जाएंगे। जो जानना नहीं चाहेगा तो वो तो भाई फिर गुमराह। अगर मैं फिक्र मुझे ना हो या मैं मुसलमान हूं भी या नहीं, हाँ तो ठीक है यार तू नमाज पढ़ता है, धोखा नमाज पढ़ते उसकी पढ़ रहा हूं या नफ्स की पढ़ रहा हूं। नहीं यार तू तो हज भी करा, फिक्र ना कर, तू रोजे भी रखे, धोखा सुन धोखा, ये कोई गारंटी नहीं आ रही इसकी। गारंटी आएगी तो कहां से आएगी, सुभान अल्लाह, रहमत इंसान ही तो बताएंगे गारंटी। क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं देखिए कि जो लोग जानना चाहता है कि मैं कामिल मोमिन हूं, सही मुसलमान हूं, तो कामयाब हो जाएगा। तो कैसे जाने, कैसे पता चले? अब इस पे हमने जानना है अपने आप और सच ऑनेस्टी से करना, यानी इसमें ये नहीं कि डंडी मारेंगे तो फिर खुद धोखे में रहेंगे। आज हमने इस शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप अपनी पिक्चर को देखना है कि वाकई ये सही है या नहीं है, अभी पता लग जाएगा कि मैं कितना बड़ा मोमिन हूं, कितना बड़ा कामिल इंसान हूं। ये है सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई 22-22 करोड़ गए होंगे इस हदीस को लेकर, मैं तो अटक गया। अभी 10 आधा घंटा होगा मैं ये हदीस देखी, इससे पहले मैंने हदीस नहीं देखी थी। आते आते मैं आज सोचा कि दोस्तों से क्या बात की जाए, तो इत्तेफाक से किताब हाथ में आई, देखा तो टक से दिल अटक गया इस हदीस पे। मैं ये हदीस तो बड़ी प्यारी की यार, नजर से गुजरी नहीं, बस इन इस फिक्रों पे, चार फिक्रों पे वहीं अटक गया मैं और मराखे में चला गया कि यार इसके बारे में सोचूं, ये तो बहुत खतरनाक चीज आ रही है। तो वही मैंने आपको बता दी और बैठे बैठे बातों में खुद ही बयान बन गया। क्या ना बयान, बोले ये सब किसका कमाल है, ना मेरा है ना आपका है। ये हमारी नीयतें सही थी कि हम जाएंगे कुछ सीखेंगे, अल्लाह को जिक्र करेंगे, नहीं हम इस पर दुकान भी नहीं चलाएंगे, नहीं हम कब भी नहीं मारेंगे, नहीं हम खाना भी नहीं खाएंगे, नहीं हम सोएंगे भी नहीं, चले चले यार अल्लाह का जिक्र हो रहा है, शायद अल्लाह की बात बन जाए। अल्लाह कहते ये तो मेरे महबूब बन जाए, इनको मैं जन्नतों ही पहुंचा दूं। ऐसी बात समझ आ गई हमारी। अब हमने देखने आप अपने आप को जानने, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जानना चाहता है कि मैं कामिल मोमिन हूं, मुसलमान भी हूं, सही है नहीं, तो क्या तरीका बताया? ये नहीं कहा कि इसको नमाजें देखो, इबादत देखो, कुछ नहीं कहा। अजीब अजीब लाइन मुड़ गई। हमें कोई जानना चाहता है कि मैं कामिल मोमिन हूं तो सुन लो, कामिल मोमिन वो होगा, कामिल मोमिन वो होगा जिसको लोग अपनी जान और माल, बहुत अजीब बात है कि जिनको लोग अपनी जान अपनी माल के बारे में अमानतदार समझ उठे होंगे। कितने बड़ा प्यारी हदीस है, सुबह कामिल मोमिन वो होगा। देखिए इबादत कोई नहीं आ रही है, एक और चीज आ रही है, हाईएस्ट उसकी बात आ रही है इंसान की। कामिल मोमिन वो होगा जिसको लोग आ गया, लोग में कौन आ गया? काफिर मोमिन इस्लाम सब आ गए, जिनको लोग अपनी जान और माल के बारे में ईमानदार समझते होंगे। यानी जब लोग मुझे कहें कि ये शख्स तो ऐसा है कि कभी मेरे बारे में बुरी बात कर ही नहीं सकता, जान और माल मैं तो उससे बिल्कुल महफूज हूं, किसी रंग का मजहब का आदमी हो बेलौस आप पे यकीन कर जाए मुझे नुकसान दे ही नहीं सकता, ये तो बड़ा हलीम इंसान है, ये तो बहुत खूबसूरत इंसान है। नबी करीम सल्लम की जाते ग्रामी बिल्कुल यही थी, आप देख लें, बातें कुछ करते थे अमानतें आपको ही देते थे। है कोई काफी ये नहीं कह सकता था कि आप फला है फला है, सब यकीन रखते थे, सच्चा मांगते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इनकार इस वजह से था नफ्स और सुभान अल्लाह। अब मजमून समझिए, तो कामिल मोमिन की निशानी एक है कि मेहराबे हों ये कुछ नहीं, यानी कि हर आदमी जो है लोग जो है क्या है किसी मजहब का हो मुझे यकीन रखता ये शख्स जो है मेरी जान के बारे में मेरी माल के बारे में मेरा ईमानदार है, मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें तो घर वाले पूछते आपकी बीवी एतबार करेगी, आप छुपा के रखेगी पैसे नहीं आने कर लेने पैसे मेरे सौदा ले आएगा इससे। कैरेक्टर चाहिए ईमान जन्नत के लिए, कैरेक्टर चाहिए दोस्तों, ये इबादत चाहिए सबसे बड़ी अखलाक की इबादत है, इसमें कोई मेहनत नहीं करता। क्यों सूफीज लोग कामयाब होंगे आखिरत में, क्यों जन्नतें खुलेंगी उनके लिए, क्यों दुनिया उनको याद करती है हजार हजार साल गुजरने के बाद भी, आज मुजद्दल सानी को कौन याद करता है, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती को क्यों लोग याद करते हैं, मतलब कादर जिलानी क्यों लोगों को तखील में आते हैं, क्यों खास नहीं यही नमाजें पढ़ी हैं यही इबादत की है यही हज किए, बल्कि कम किए होंगे, हजरत मुजद्दल सानी तो हज किए ही नहीं उमरा किए ही नहीं, मुझे बताएं। और वो मुजद्दद अलीफ सानी है कि कोई औली अल्लाह अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच सका। मुजद्दद 1000 साल का मुजद्दद है, वो तजदीद करने आया था, कोई नहीं पहुंच सका अभी तक उन्हें। सुभान अल्लाह, क्या चीज थी ये चीज थी, सुभान अल्लाह इस मुकाम पर थे जान और माल। हर आदमी गवाही दे दे कि मेरा माल ये नहीं खा सकता, पड़ गया 100 रुपया, उसने वादा किया कि मैं तुम्हें कल दे दूंगा, हां बंद करके इंसान अतबार करता है उस पर कि दे देगा, लोग कसमें खाई इतना पैसा खा जाएगा, सवाल पैदा ही नहीं होता। होते हैं निवासी लोग, वो है कामिल मोमिन। अब हम उस शीशे पे खड़े हो जाए इस हदीस के, जरा हम तो अपनी बात करते, मैं भी खड़ा हो जाऊं आप भी खड़े हो जाएं, अब बताएं कहां के मुसलमान हैं हम, अगर ये करेक्टर हमारे अंदर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि समझ जाते हैं नहीं, ये तो कभी झूठ नहीं बोलेगा मेरे लिए, कभी मेरी गिबत कर ही नहीं सकता, मेरी बुराई कर ही नहीं सकता, मुझे क्यों मारेगा, मुझे क्यों धोखा देगा। हर आदमी दुश्मन भी इस चीज पर मानता हो कि नहीं यार ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो बार है कोई आदमी ये फला आदमी तुम्हारे लिए बारे में तस्वर नहीं कर सकता मेरे बारे में ये बात करे, वो तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन होगा लेकिन मैं उसके करैक्टर को जानता हूं, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। ये कौन, ये किसकी शान है, कामिल मोमिन की शान है। सुभान अल्लाह। अब हमें सोचना चाहिए कि इस चीज को हासिल करें, इस पर मेहनत करें, वरना वही बात है गुमराह और धोखा। आंख कब खुलेगी, कब्र में पहचाने इस चीज को भाइयों, उस पर मेहनत करें। मेहनत का तरीका मैंने आपको बता दिया क्या है कि अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक डालें। बस जब हम ये वादा कर लें अपने आप से कि हमने हर काम जो करना है सुन्नत शरीफा के मुताबिक करना है, नबी हम जो तरीके के तब जाएंगे पहले कि यार हम ये कारोबार करने लगे हैं, आओ इस भाई से कारोबार करना है, ये कारोबार का तरीका क्या है सुन्नत के मुताबिक, हाँ बंद करके कर लें आप अल्हम्दुलिल्लाह, ना आप धोखा लेंगे ना धोखा खाएंगे। कामिल मोमिन की निशानी ये है, उसको धोखा भी कोई नहीं दे सकता। मोमिन कभी एक सुराख से दो डंग नहीं खाता है, हदीस है। کیوں؟ اسی لیے کہ خود کامل ہے وہ. اس کے صرف یہ کہ جب اس نے کسی کو دھوکہ نہ دیا تو اللہ اس کو بچاتا ہے ہر ایک کے دھوکے سے, اس کو کبھی بھی تکلیف آنے ہی نہیں دے گا. یہ شخص اس زمانے کے اندر ہے, ساری دنیا اس کے خلاف ہے, سب اس کو برا برا کرتے ہیں. وہ بڑا آرام سے سوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ سب میرے دشمن ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ مکمل دشمنی کرنا چاہتے ہیں, میرے اپنے بھی اور پرائے بھی. لیکن فکر کیوں نہیں ہے؟ کہ فکر اس لیے کہ میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا. میں نے کبھی دھوکہ دیا ہی نہیں, میں تو کیونکہ اس کی کاملیت کی نشانی یہی ہے. کیوں؟ کہ زندگی کو نبی بن کے زندگی کے مطابق زندگی گزارا ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں, کاروبار اس کے مطابق ہے, انشاءاللہ آپ کو کاروبار میں کوئی دھوکہ نہیں دے. آپ گھر میں اپنے معاملات کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو کوئی بچہ دھوکہ نہیں دے گا. وہاں نافرمان ہوتے ہیں بچے, وہاں دھوکہ دیتے ہیں بچے, وہاں فساد چلتے ہیں, وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں, وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. معاشرہ ہمارا کیوں بگڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا طریقہ نکل گیا ہے. بیٹا بھی نافرمان, بچی بھی نافرمان, گھر میں مصیبت, بیوی بھی یہ تو فلاں بھی جھگڑے تو فلاں بھی یہ, جادو کہہ رہا ہے کوئی, جن کہہ رہا ہے کوئی, فلاں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کامل مومن بنے تو جنات آپ کے دوست بن جائیں گے, آپ سے دعا کرانے آئیں گے. اللہ کی قسم خاص کے اس مسلح بیٹھ کے میں آپ سے کہتا ہوں, غول کے غول آپ کے پاس آئیں گے کہ چلو فلاں جگہ پہ ایک بزرگ ہے, اسے جا کے دعا کراتے ہیں. انسانوں کے شکلوں میں آ کے بیٹھیں گے آپ کے سامنے. انسان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں, انسان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. وہ تو جن کہتے ہیں, خود کہتے ہیں جن. پتہ نہیں انسان جی ہم سے کیوں ڈرتے ہیں, تعجب ہے کہ یہ بندہ ہم سے کیوں ڈرتا ہے. اس کے پاس تو ایک ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ نبی پاک کا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ہی چیز پہ ہم پہ حملہ کرے تو ہم تباہ ہو جائیں. ہم تو ہیں ہی کچھ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں, انہوں نے ہمیں خدا بنا لیا. کہتے ہیں تو ہمیں پوچھ رہے ہیں, وہی میں بتائیں گمراہ اور شیطان کیا ہوتا ہے. آج پوری زمانہ دنیا جو ہے ان کو چوم رہی ہے, پوچھ رہی ہے, کتنے بڑے کاروبار چل رہے ہیں جنوں کو نکالنے کے, جنانے کے, ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم خود گمراہ ہیں دھوکے میں. اللہ معاف فرمائے, ابھی تو زندگی ہے, اس کو تو چھوڑے جنات وغیرہ کو. یہ سوچیں کہ قبر کی رات جب آئے گی تو وہاں ہمارا کیا حال ہوگا, ہماری نمازیں کہاں جائیں گی, ہماری عبادات کہاں جائیں گی. معاشرے مجھے دکھائے آدمی, میں تو کرتے ہی دیکھا ہے کہ وہ وہاں سے گیا ہے, پیچھے اس کی غیبتیں کر رہے ہیں لوگ, وہاں سے نکلا ہے اس کو برا کہتے ہیں, یا ہم جانتے ہیں اس کو فلاں ابھی تو یہ کر رہا تھا, ہم جانتے ہیں, دیکھو دیکھو یار کیا اعلان کر رہا ہے خود, ابھی دیکھو کیا کرے گا. میں مسجد سے نکلنا بھی اسی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں جو نماز پڑھا رہا ہے. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, جیسے میں ذکر کر رہا ہوں, یہ عجیب معاملہ. وجہ کیا ہے کہ ہم سب دھوکے شیطان کے نفس کے اندر آ چکے ہیں. اپنی آنکھیں کھولیں, اپنی زندگی کو ایک ایسے راستے پہ ڈالیں جہاں سے گارنٹی آ جائے اللہ کے رسول کی طرف سے یہ کامل مومن ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری صفت آئی ہے نہیں آئی ہے, اسے دیکھیں صفت پیدا ہوئی ہے ہمارے نہیں, کہ لوگ ہمیں کہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو خود کہتے ہیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, واہ جی واہ, تو تو بڑا ولی اللہ ہے, وہ تیرا تو کیا مقام ہے, تو تو دیکھ لوگ تیری ایسی تعریفیں کرتے ہیں, تو تو یہ ہے, تو فلاں ہے, تو اتنا بڑا یہ ہے, تو اتنا بڑا یہ ہے, تو اتنا بڑا, سارے بڑے اس کو شیشے کے سامنے نظر آتے ہیں, خود ہی اپنے آپ کو بڑا کہا جا رہا ہے. اور جو نہیں کہتا اس کو کہتا ہے کہو مجھے کیوں نہیں کہہ رہے, اس پہ ناراض بھی ہوتا ہے آدمی. اور اس کو کوئی سچ بات کر دے تو بس پھر وہ تو پھر مصیبت سمجھے آپ, کتنا بڑا دھوکہ ہے. بے نیاز ہو جائے انسان دنیا سے, فارغ ہو جائے کہ کیوں مجھے کوئی کیا نہ کہے یا نہ کہے, اس سے کوئی تعلق نہیں, کان بند کر لے گی, نہ تعریفیں سننے کا عادی ہو نہ برائی سننے کا عادی ہو, بس واحد ایک چیز اس کو سمجھ میں آئے سبحان اللہ, کہ اس کو پتا بھی نہ ہو اور لوگ اس کی تعریفیں کر لیں. مسرت ہو گیا بات, کبھی میری اور آپ کی تعریف کرتا ہے مجھے بتائیں, سنیں کبھی آپ نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھائی دو چیزوں پہ, کہ نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ کسی کا مال کھا سکتا ہے, نہ کسی کو گالی دے سکتا ہے, نہ کسی برائی دے سکتا ہے. ہمیں تو لوگ کہیں گے بچنا, اس سے بچنا, داڑھی نہ دیکھو, بڑے دیکھیں داڑھی والے, بڑے دیکھیں وہ نمازی, عباداتوں کو لوگوں کی عباداتوں کو بدنام کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا کریکٹر نہیں ہے. डायरेक्ट उनकी इबादतों पे पढ़ते हैं, वो बस पढ़ देखे हाजी यार बताओ तुम्हें हज क्या करते, बताओ तुम्हें हज हर साल हज जाते हैं क्या करते है या नहीं हमारे माश में बात है। वजह ये है कि शैतान को पूछते हैं वो शख्स, मजा तो ये है सुभान अल्लाह, मजा तो ये है कि दुश्मन भी आपको कहें कि भाई मामला आदमी अच्छा है, आदमी सही है यार। तो मेरे भाई अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, अभी हम जिंदा हैं सही दीन को समझें, आखिरत के हिसाब को समझें कि आखिरत में हिसाब क्या होगा, हमारा क्या मामला होगा। वाहिद एक रास्ता अल्लाह ने बताया, वाहिद एक रास्ता बताया अल्लाह की कसम, उस रास्ते को मैं और आप पकड़ लें मजबूती के साथ जिंदगी में, वो क्या रास्ता है, नबी करीम की सुन्नत का रास्ता है, तेरी क्या रास्ता है। तो हजार जिंदगी के धोखों से आदमी निकल जाता है हर फेल पर, ये नहीं कि भाई एक एक तीन चार फेल हमने कर लिए, शक्ल पहन बना ली, ये वो कर लिया, बस सुन्नत, ये सुन्नत है, इसी के नाम तो सुन्नत नहीं है, सुन्नत तो हर चीज का नाम है, सुन्नत को सोने का नाम भी है, सुन्नत तो उठने का नाम भी है, सुन्नत तो टॉयलेट जाने का नाम भी है। ठीक है आपने दाढ़ी शाड़ी रख ली सब कुछ रख लिया तो बाकी काम में शैतान नफ नहीं आ जाएगा, आप अगर टॉयलेट जा रहे हैं और सुन्नत के तरीके भी नहीं जा रहे वहां क्या धोखा दे देगा। फिर जहां आपने सुन्नत को छोड़ा आपने दरवाजा खोल दिया उसके लिए क्या मुझे धोखा दे। याद रखिए इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं अल्लाह वालों ने, बुजुर्गों ने, किस पर, सिर्फ सुन्नत का तरीका, कैसे खाया जाए, कैसे पहना जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे सोया जाए। आरिफ बिल्ला हजरत शेख जिनकी सोबत में अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, मैं बैठा डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, ऐसी किताब सुनो मतलब उस वक्त उलमा कराम मान गया अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती शफी अहमदुल्ला जैसे इंसान खड़े हो गए सुभान अल्लाह, हालांकि वालिम नहीं थे, क्या क्या कहते क्या कमाल किया शख्स ने, मदीने में जिक्र होने लगा उनकी किताबों का, क्योंकि सब सुन्नत नबी पाक सुन्नत है, खाओ कैसे, पहने कैसे, उठो कैसे, जाओ कैसे, वैसे एक घर के अंदर हर फर्द को जो सबसे पहले बचाओ उस तरीके से बताना चाहिए, कुछ कुछ पता ही नहीं बातों भाई नहीं। ठीक है अलहमदिल्ला बस एक जौक हमारे में है, सीधे कुरान पकड़ाते हैं हाफिज बन जाए, उसके गाने बन जाए, ये बन जाए, अलहमदिल्ला बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दीन नहीं बनता ऐसे, दीन बनेगा तो कहां से बनेगा, नबी पाक के तरीके से बनेगा, उसको पकड़े बच्चे को सिखाना शुरू करें, नहीं बेटा बैठे खाओ, नहीं पानी पिसो, ना फना फना करो, मैं एक बच्ची की बात बताता हूं आपको आज की अजीब बात है। कतर में अभी पिछले दिन की बात है, बारिश नहीं हो रही थी, 3.5 साल की बच्ची है, ईमान देखें उसको, अपना हम अपना देखें, कितने साल की, 3.5 साल की। तो अरब में तो खास दस्तूर आपने देखो कभी मदीना मक्के में आपके वास्ते तो पड़े होगा, मैंने खुद भी देखा है, जब बारिश नहीं होती तो सीधा काम क्या करते हैं, कोई नहीं करते काम, अरबों में बड़ी चीजें अभी भी आप बता रहा हूं, कुछ नहीं करते, सीधा क्या करते हैं, सुन्नत का तरीका पकड़ते हैं, देखा ना आप सलात पढ़ते हैं, क्या कहते हैं सलात, तो उस बच्ची का कमाल देखें, छोटी सी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह उसका ईमान देखें कि जब बारिश नहीं हुई वहां पर तो वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि ये बारिश के जो एक दुआ मांगते थे वो क्यों नहीं मांग रहे जमा होकर, मामा अगर वो दुआ मांग ली जाए तो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह जी फौरन बारिश भेज देंगे। इत्तफाक ये हुआ क्यों, वो तो करते ही ये काम, उन्होंने ऐलान कर दिया, अभी की बात बता रहा हूं कि भाई जो है नमाज होगी बारिश की जो सका है आप आए, तो बच्ची सबसे पहले आगे गई, अभी हाथ उठा के नीचे किए नहीं थे कि ग्रों बादल आना शुरू हो गए घोरे घोरे वाले, तो बच्ची कहती है देखा मामा मैंने नहीं कहा था कि अल्लाह जी फौरन सुनते हैं बात, कैसे नहीं सुनते हैं, हम मांगे तो फौरन मिलती है चीज हमें, ये ईमान। नबी पाक की सुन्नत इतनी जबरदस्त सुन्नत है कि सिस्टम को चेंज कर देती है जमाने की, ना बारिश का ना पता ना कुछ, ड्रॉप्स पूरे तरीके से हुआ, लेकिन कमाल देखी जहां सुन्नत का तरीका अख्तियार किया, मास्क जमा हुए अभी हाथ ही नीचे नहीं किए थे तो बादल घूमन के आगे बारिश होना शुरू हो गई, یہ بھائی حقیقت ہے جو کچھ لکھا گیا تھا اس ترمذی کو, اس کی میں حدیث آپ کو سنائی ہے, انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں سب سے زیادہ تو میں اس کے محتاج ہوں اس چیز کا. آپ بھی دیکھیں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. دھوکے میں نہ اس کہ تو بہت یہ تو نہیں کہتا ہے بھائی ایک طریقہ بتایا, واقعی اگر میں اس چیز ہوں تو میرا مقام ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی میرے ہاتھ سے میری زبان سے میری جس چیز سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, نہ غیبت کروں گا, نہ جھوٹ بولوں گا, نہ فلاں کروں گا, نہ فلاں کروں گا. جب یہ سب کچھ کسی کے لیے چھوڑ دیں گے, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑا آپ کا دشمن اور آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ سے باز نہیں آ رہا, بری کرتے ہیں آپ, مصیبت میں ڈالا ہے آپ کو, لڑنے کے لیے تیار ہے, آپ کے مال دولت کو کھینچنا چاہتا ہے. ایک طریقہ اختیار کر لیں, ایک طریقہ سنت کا طریقہ, وہ کیا ہے کہ آپ اس آدمی کی غیبت کرنا چھوڑ دیں, اس آدمی کی برائی کرنا چھوڑ دیں, اس کے لیے دعا شروع کر دیں جو نبی محمد کی سنت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے, اس کو میرے لیے بہتر انسان بنا دے. اتنی پیاری پیاری دعائیں نبی محمد کے دشمنوں کے لیے, دشمنوں کے لیے بڑے خوبصورت دعائیں ہیں, ایمان تک مانگتے ہیں نبی محمد اس کے لیے. یہ ایک ہفتہ آپ یہ کام کر کے دیکھیں, اگر وہ دشمن آپ کے پاس آ کے معافی نہ مانگے تو مجھ سے مانگا بات کریں. یہ کائنات نبی کریم سمجھ کے پرتو ہے, عکس پر چلتی ہے پوری کائنات. بھائیو آپ سن کے سنت پہ عمل کر کے دیکھیں, بڑے سے بڑا دشمن زیر ہو جائے گا. دشمن کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اس کو ماریں اور اسے نیچے کریں گے, اسے بدلے لیں, نہیں. سرکار سنت یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سکھائیں. وہ آپ کو گالی دے رہے ہیں, آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں, وہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے, آپ اس کہتے ہیں چھوڑ یار کیا میں نے کیا کیا ہے. آپ خود دیکھیں گے تصویر کا رخ بدلتا جائے گا الحمدللہ, اب آپ کا عاشق ہو جائے گا, آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب
فرمائے. شفیع المظلمین دعو یزین نبیب امین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و ازواجی و مات المومنین و ذریاتی و اہل بیتی کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسليما دائما ابدا كثيرا غزيرا غزيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وفضلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعبنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقت حاجاتنا, يا داعي البليات اتفع بلياتنا يا شافي المراد اشفع مرادنا يا شافي المراد اشفع مرادنا يا شافي المراد اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم دمر همهما كما ربياني صغيرا.
ہمارے بولٹن کے ساتھی ہیں, ان کے والد صاحب پاکستان میں انتقال فرما گئے, ان کے لیے دعا فرمائیں. اور ایک ہمارے سلسلے کی بہت ہی نیک پارسا خاتون تھیں جس وجہ میں وہ انتقال فرما گئی ہیں, بہت اچھی ذاکرہ تھی, ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے, تمام اعمالوں کو قبول فرمائے, زندگی کی ساری محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اونچے مقام پہ درجہ عطا فرمائے اور سلسلہ نقش بند مقام عطا فرمائے. اور جتنے بھی مومن اور مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں, میں نے بولا ان سب کی بخشش فرما دے, پوری امت کی بخشش فرما دے, پوری امت پہ رحم فرما دے, پوری امت پہ فضل فرما دے. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے, ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمارے تمام معاملات کو تو بخوبی جانتا ہے. یا اللہ ہمارے حاجتوں کو تجھ سے بہتر کون جاننے والا ہے. اے میرے مولا ہماری ساری حاجات کو پورا فرما دے. یا کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.